हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ओबेरॉय मेंशन के गार्डन में जयजी, सिमरन और रुद्र ब्रेकफास्ट टेबल पर मौजूद थे। उनका हाउस हेल्पर एक नोटिस लेकर आया था। रुद्र ने नोटिस लिया और हेल्पर को वापस जाने को कह दिया था। रुद्र उसे खोलकर देख रहा था, तभी सिमरन ने पूछा, ये नोटिस किसके लिए है? रुद्र ने कागज को ध्यान से देखते हुए जवाब दिया, कोई लीगल नोटिस लग रहा है। लेकिन हमारे सारे लीगल इश्यूज तो मिस्टर गिल संभालते हैं, और घर पर कौन लीगल नोटिस भेजेगा? कंपनी से जुड़े नोटिस तो आमतौर पर ऑफिस में ही आते हैं, जरा देखो तो, जयजी ने भौहें से कोड़ते हुए कहा। रुद्र ने नोटिस पढ़ना शुरू किया और फिर हैरानी से बोला, डैड, ये घर पर इसलिए आया है क्योंकि ये कंपनी से जुड़ा नहीं है, ये नोटिस आरव ने भेजा है, वो भी आयु के लिए। आरव और आयु के डिवोर्स के बारे में उन्हें अच्छे से खबर थी, लेकिन उसमें अभी टाइम था। अचानक आरव का इस तरह आयु को लीगल नोटिस भेजना उन्हें हैरान कर रहा था। सिमरन ने तुरंत पूछा, लेकिन उनके डिवोर्स में तो अभी टाइम है ना, फर्स्ट हियरिंग आ गई क्या? इतनी क्रूशियल सिचुएशन में भी रुद्र हंसकरा, उसने सिर हिलाकर कहा, नो सिमरन, लगता है किसी को अपनी वाइफ का दूर जाना बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो ऐसी बचकानी हरकतों पर उतर आया है। रुद्र, तुम हंस क्यों रहे हो? जो है सीधे सीधे बताओ, जयजी थोड़ा सख्त होकर बोले। क्योंकि ये लीगल नोटिस किसी मजाक से कम नहीं है डैड, रुद्र बोला, आपके प्यारे दामाद जी ने आयु के खिलाफ नोटिस भेजा है कि उसने बिना बताए डिजायर्स छोड़ दिया, जबकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का शूट कंप्लीट करना था। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी फोटोशूट होगा, और वो बिना मिस्टर खुराना की परमिशन के यहाँ आ गई। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए उसे कंपनी को कंपनसेशन देना पड़ेगा। सिमरन के चेहरे पर हैरानी और नाराजगी के मिले जुले भाव थे। वो बोली, ओ गॉड, डिस्कस्टिंग, और कंपनसेशन कितना देना पड़ेगा? रुद्र ने कंधे उचकाकर कहा, ज्यादा नहीं, बस 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ की रकम सुनते ही सिमरन और जयजी का चेहरा देखने लायक था। इतने बड़े कंपनसेशन की रकम किसी बड़ी डील को तोड़ने पर रखी जाती थी, जबकि ये तो एक मामूली सी मॉडल की नौकरी थी। साथ ही जयजी को आयु पर गुस्सा आ रहा था, इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने उन्हें कुछ नहीं बताया। जयजी गहरी सांस लेकर सख्त आवाज में बोले, अब मैं इस लड़की से क्या कहूं, पता नहीं क्यों वो सारी बातें हमसे छुपाती रहती है। तो ये वजह थी उसकी डिजायर्स के लिए मॉडलिंग करने की? एक बार बता तो देती कि वो क्यों मॉडलिंग फील्ड में गई। मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरे बच्चे मजबूरी में कोई काम करें, और वो इस घटिया कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो मॉडलिंग कर रही थी। अब क्या कह सकते हैं, तो क्या सोचा है डैड, क्या आयु को वापस जाना पड़ेगा? रुद्र ने पूछा। आयु तक नोटिस पहुंचा नहीं था, तो उनके पास आयु के बिहाफ में फैसला लेने का हक था, सिमरन ने चिंता जताते हुए कहा। नहीं रुद्र, मुझे नहीं लगता हमें आयु को इस बारे में कुछ बताना भी चाहिए, उसे यहां आए अभी 1 ही दिन हुआ है। मैं सिमरन से अग्री करता हूं, इस नोटिस के बारे में हम तीनों के अलावा किसी को नहीं पता चलना चाहिए। ऑफिस चलते हैं, वहां बैठकर डिसाइड करेंगे कि इस नोटिस का जवाब कैसे देना है, और आयु के सामने तो भूलकर भी इसका जिक्र मत करना, जय ने जवाब दिया। रुद्र ने उनकी बात पर सिर हिलाया और बोला, हमारी आज की मीटिंग डिजायर्स के साथ कोलैब करने के बारे में थी, ना कि आरव खुराना के भेजे नोटिस का जवाब देने के बारे में। उसके बारे में भी डिसाइड करेंगे, फिलहाल इस नोटिस को अपनी पॉकेट में रख लो, ये ज्यादा सही रहेगा, जयजी ने कहा। वो आगे कुछ कहते उससे पहले तभी उनकी नजर आयु पर पड़ी, जो ब्रेकफास्ट टेबल की ओर आ रही थी। वो धीरे से बड़बड़ाकर बोले, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस लड़की पर गुस्सा करूं या उसकी फिक्र। आयु टेबल पर आकर बैठ गई थी, जबकि मंथन और अनुष्का अभी भी सो रहे थे। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा था, गुड मॉर्निंग, मेरी नींद खुल गई, मंथन और अनु अभी तक सो रहे हैं। सिमरन ने हंसते हुए कहा, हाँ, लगता है किसी ने रात भर गॉसिप की है। आयु की आंखें ठीक से ना सोने की वजह से हल्की सी सूजी हुई थी। आयु ने शरारत भरे अंदाज में जवाब दिया, बस थोड़ी सी। अब कैसा फील हो रहा है तुम्हें, रुद्र ने पूछा। आयु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक अलग सुकून मिल रहा है, जैसे कोई पक्षी अपने घोंसले में लौट आया हो। फिर उसने जयजी की ओर देखकर पूछा था, क्या हुआ डैड, आप मुझसे नाराज हैं क्या? आयु ने महसूस किया जयजी उससे नजरें चुरा रहे थे। जयजी ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, मैं क्यों तुझसे नाराज होऊंगा? आयु, ये तुम्हारा ही घर है, इस पक्षी को अपने घोंसले से दूर जाने की जरूरत नहीं है, पर पता नहीं बार बार क्यों वो इधर उधर उड़ जाता है और भटक भी जाता है। जयजी का इशारा आयु और आरव के कॉन्ट्रैक्ट की तरफ था। आयु ने हल्के अंदाज में जवाब दिया, अगर पक्षी सिर्फ अपने घोंसले में रहेगा तो वो उड़ना भूल जाएगा। मैंने तो मजाक में कहा था और आपने मेरी बात इतनी सीरियसली ले ली। इतनी सीरियसली तो मैंने कभी किसी चीज को नहीं लिया, यहां तक कि अपने डिजाइनिंग करियर को भी नहीं। जयजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ वो तो दिख ही रहा है। चलो तुम अपना ख्याल रखो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताना। रुद्र सिमरन चलें? अगर वो ज्यादा देर आयु से बात करते तो उनके इमोशंस उन पर हावी होने लगते। सिमरन ने ऑफिस से छुट्टी ली थी, फिर वो उसे ऑफिस जाते देख आयु ने तुरंत पूछा, अरे आप भाभी को भी अपने साथ ले जा रहे हो डैड? आपने तो उन्हें ब्रेक दिया था। हाँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आयु, मुझे जाना पड़ेगा, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, सिमरन ने जवाब दिया। जयजी वहां से निकल गए थे तो अब रुद्र और सिमरन ही आयु के पास बचे थे। रुद्र ने आयु को परेशान करते हुए कहा, जल्दी उठ गई या नींद नहीं आई? देखो ऐसे 9 बजने उठना नहीं चलेगा। आयु ने नकली नाराजगी दिखाते हुए कहा, भाई अब आप मुझ पर टॉन्ट मार रहे हो, क्या सास की तरह ताने मारने शुरू कर दिए? लगता है इसने अपनी दादी सास से काफी ताने सुने हैं तभी हमें बोल रही है, रुद्र ने हंसते हुए जवाब दिया। आयु ने तुरंत कहा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, दादी बहुत अच्छी हैं। रुद्र और सिमरन बात करकर आयु के दिल का हाल जानना चाहते थे कि आखिर आयु और आरव का रिश्ता कैसा है। क्या आरव ने वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इस वजह से भिजवाया था कि आयु उसके बजाय मंथन के साथ यहाँ आई थी, या सच में वो इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर सीरियस था? उनकी बातों के बीच अचानक सिमरन ने पूछा, और आरव? आयु ने कुछ पल सोचा और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, वो भी शायद उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था, बस जानबूझकर अपनी बुरी इमेज बनाकर रखना चाहता है ताकि कोई उसके करीब ना आ सके। उसका जवाब सुनकर रुद्र और सिमरन ने एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा। आरव के साथ रहते हुए आयु की थिंकिंग उसे लेकर थोड़ी बदलने लगी थी, लेकिन अब तक वो उसके भेजे लीगल नोटिस से अनजान थी। क्या पता उसे जानने के बाद आयु गुस्सा ना हो जाए। ये सोचकर रुद्र ने आंखों में सिमरन को चुप रहने को कहा और फिर उसे बाय बोलकर वो दोनों ऑफिस के लिए निकल गए थे। कुछ ही देर में जयजी, रुद्र और सिमरन ऑफिस पहुंच गए थे और सबसे पहले मीटिंग रूम में अपने लॉयर मिस्टर गिल से इस नोटिस के बारे में सलाह लेने बैठे थे। उन सबके चेहरे के भाव गंभीर थे। मिस्टर गिल ने नोटिस पढ़ने के बाद कहा, इस नोटिस के हिसाब से आयुष्का सिंह ओबेरॉय पिछले 3-4 दिनों से ऑफिस नहीं गई और उन्होंने ऑफिशियली इन्फॉर्म भी नहीं किया, ना ही कोई सिक लीव डाली है। शायद यही वजह हो सकती है कि आरव खुराना को ये कहने का चांस मिल गया कि उन्होंने बिना बताए जॉब छोड़ दी। लेकिन आरव आयुष्का का हस्बैंड है, हो सकता है उसने पर्सनली इन्फॉर्म किया हो, रुद्र बोला।
मिस्टर गिल ने गंभीर होकर जवाब दिया, लेकिन हम ये बात कोर्ट में प्रूव नहीं कर सकते। कोर्ट के हिसाब से पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्ते अलग हैं। आयुष्का को इन्फॉर्म करना चाहिए था। तो क्या हम आरव के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते? सिमरन ने पूछा। नहीं, उसके पास सारे एविडेंस हैं, मिस्टर सिंह बोले। वो नहीं जानते थे लेकिन आरव शुरुआत से ही कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ही प्रोफेशनल और लीगल तरीके से सेट किया था ताकि आयु के पास पीछे हटने का रास्ता ना हो। आरव के इस नोटिस के चलते आयु फंस गई थी। तो क्या आयु को वापस डिजायर्स जाना पड़ेगा? रुद्र ने परेशान स्वर में कहा। आई विश मैं ये कह सकता, लेकिन इस नोटिस के हिसाब से आरव ने डायरेक्ट कॉम्पेंसेशन मांगा है, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। आयु को 5 करोड़ रुपए डिजायर्स को देने ही पड़ेंगे या फिर जेल जाना पड़ेगा, मिस्टर गिल ने जवाब दिया। रुद्र ने उम्मीद के साथ पूछा, कोई लूपहोल्स? मिस्टर गिल ने कहा, अगर 1 हफ्ते में आयु वो शूट कंप्लीट कर दे तो शायद आरव 1 हफ्ते बाद पैसे ना मांग पाए। बाकी मुझे नहीं लगता मिस्टर खुराना आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने के मूड में है। उनके नोटिस से साफ जाहिर है मामला वो कोर्ट तक ले जाकर ही मानेंगे। इससे पहले कि रुद्र आगे कुछ पूछता, जयजी ने सख्त आवाज में कहा, थैंक यू गिल साहब, हम सोचते हैं कि इस बारे में क्या करना है। मिस्टर गिल ने जयजी और रुद्र से हैंडशेक किया और चले गए थे। जयजी, सिमरन और रुद्र मीटिंग रूम में बैठकर ये सोच रहे थे कि अब आगे क्या करना है। जयजी ने परेशानी भरे स्वर में कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों ना हम आयु से बात करें, शायद वो पर्सनली आरव से बात करके सब कुछ आराम से सॉल्व कर ले, या हम बीच में दखल दें, सिमरन ने अपनी राय दी। सिमरन, तुम आयु को अच्छे से नहीं जानती, उसे पता चला तो वो चंडीगढ़ शूटिंग करने पहुंच जाएगी और अभी वो उस हालत में नहीं है कि इतना काम कर सके, रुद्र तुरंत बोला। वो सब आयु की जिद से अच्छी तरह वाकिफ थे। जयजी ने कुछ पल रुककर पूछा, मुझे पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आयु के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन, वो बोलते हुए रुक गए। सिमरन ने पूछा, लेकिन क्या डैडी जी? रुद्र ने उनकी बात पूरी करते हुए कहा, लेकिन आयु को पता चला कि डैड ने आरव को पैसे दिए तो वो शायद फिर कभी लुधियाना हमारे घर ना आए। उसका यहाँ ना रहने की यही वजह है कि वो अपने दम पर अपनी पहचान बनाना चाहती है। अगर उसे आरव को 5 करोड़ रुपए देने होते तो वो पहले ही मांग चुकी होती। उसे पता है कि डैड उसे कभी मना नहीं करते, खासकर जब वो एक फॉल्स कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में फंस गई हो। 5 करोड़ रुपए कोई बड़ी रकम नहीं थी, पर वो रुद्र और जय जी अच्छे से जानते थे कि आयु ने पहले पैसों के बारे में नहीं बताया तो अब भी वो उनसे पैसे नहीं लेना चाहेंगी। वो आयु की मर्जी के खिलाफ आरव को पैसे भेजकर उसे हर्ट भी नहीं करना चाहते थे। पता करो शूट कितना बचा है, जय जी बोले। रुद्र ने अपने असिस्टेंट से आरव के प्रोजेक्ट की फाइल मंगवाई थी जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन थी। फाइल पढ़ने के बाद उन्हें पता चला था कि आरव के कलेक्शन में लगभग 100 ड्रेसेस थीं, जिनमें से सिर्फ 7-8 ड्रेसेस का शूट कंप्लीट हुआ था। सिमरन ने निराश स्वर में कहा, ये तो इम्पॉसिबल है। 1 वीक में 92 ड्रेसेस का कैटलॉग शूट करना कोई प्रोफेशनल भी नहीं कर पाएगा। आई थिंक डैड, हमें पैसे दे देने चाहिए और आयु को अभी इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, रुद्र ने अपनी राय रखते हुए कहा। अब वही एक रास्ता बचा था जिससे आयु को वो इस कोर्ट केस से दूर रख सकते थे। जय जी ने सिमरन की ओर देखकर पूछा था, तुम्हें क्या लगता है सिमरन? मैं इस बारे में तुम दोनों के अलावा किसी और से बात नहीं करना चाहता। मेरे हिसाब से भी आरव को चेक भेजना ही सही रहेगा, सिमरन ने सहमति जताई और हाँ में सिर हिलाकर कहा। हाँ डैडी जी, मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन अगर पर्सनल इश्यूज को भूलकर प्रोफेशनली सोचें तो हमें डिजायर्स के साथ कोलैब भी करना चाहिए। आप भी जानते हैं कि ओबेरॉयज हमेशा ट्रेडिशनल और एथनिक कलेक्शन को प्रायोरिटी देता है और आरव का कलेक्शन बेस्ट है, उसके बारे में बाद में डिसाइड करेंगे। मुझे ड्रेसेस की कॉस्ट कुछ ज्यादा ही लग रही है, रुद्र बोला। ठीक है, बाद में सोचेंगे, फिलहाल मैं आरव को चेक भिजवा रहा हूँ और याद से कोई आयु के आगे इसका जिक्र नहीं करेगा, जय जी ने उस बातचीत को वहीं खत्म करते हुए कहा। जय जी की बात मानकर रुद्र ने डिजायर्स को 5 करोड़ रुपए का कॉम्पेंसेशन चेक भिजवा दिया था। आयु को इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि आरव ने अपने गुस्से में आकर आयु को किसी तरह का लीगल नोटिस भिजवाया है या फिर जय जी ने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ताक पर रखकर आरव को चेक तक भिजवा दिया था।